प्रिय श्रोता, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें विश्वास है कि आप सब इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना की पहली पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है संगति। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों, सुनते हैं कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रियों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी श्रोताओं का भी जो पत्र के माध्यम से अपनी गवाहियों को हम तक पहुंचाते हैं, अपनी प्रार्थना के विषय हम तक पहुंचाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं पत्र के द्वारा, फोन के द्वारा हमसे अवश्य संपर्क करेंगे और इस कार्यक्रम के द्वारा उन आशीषों को हमारे साथ बांटेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से पहला यूहन्ना की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिताजी आज के सुंदर और मधुर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके जीवित वचन का अध्ययन एक साथ अलग अलग स्थानों पर बैठकर रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं। आज जब हम यूहन्ना की पत्री से अध्ययन करते हैं तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि हर एक जब आपके वचन को सुने तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए, उनके हृदयों को छेदने पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका वचन दोधारी तलवार से भी तीखा और तेज है जो शरीर के अंग अंग और गुदे गुदे को छेदता है। हाँ प्रभु, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे श्रोता भाई बहनों से बातचीत करें, उनकी सहायता करें, उनके जीवन के हर एक कमी घटियों को, त्रुटियों को, पाप और अपराधों को उनके जीवन के सामने से निकाल दें ताकि वे आपकी ओर फिरें, अपने मनों को फिराएं और आप में विश्वास कर सकें। हमारे विनती उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय बीमार अवस्था में है। पिताजी, आप उनकी भी सुधि लें, वे जानने पाएं कि आप डॉक्टरों के डॉक्टर और वैद्यों के वैद्य हैं, आप चंगाई करने वाले परमेश्वर हैं। आप उनकी सहायता करें ताकि आज के वचन के प्रकाशन में वे आपकी निकटता में आ सकें। आज के वचन पर अपनी आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए पहला यूहन्ना के पत्री उसके चार अध्याय से अध्ययन को आरंभ करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे झूठे शिक्षकों के विरुद्ध चेतावनी। यूहन्ना की पहली पत्री का यह अध्याय धर्मशास्त्र का एक कठिन अंश है। इसका एक कारण है कि यहां आत्मिक संसार की बात की गई है जिसे हम नहीं समझते हैं। दूसरा कारण है कि यह शैतान का क्षेत्र है। मेरा अनुभव यह है कि मैंने जब जब शैतान के संबंध में आराधना में प्रचार किया है तब तब उसने आराधना में विघ्न डाला है। वह या तो किसी शिशु को कष्ट देकर रुलाता था या अन्य कोई आराधक किसी न किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न करता था। मेरे प्रियो, यह एक महत्वपूर्ण बाइबल अंश है, परंतु इसमें अंधविश्वासी होने का संकट है। मैं जानता हूं कि कुछ विश्वासी भूत प्रेत में भी विश्वास करते हैं, जो एक अत्यधिक खतरनाक काम है, परंतु हमें इस विषय में बाइबल की शिक्षा का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है। इस अध्याय के पहले 6 पदों में यूहन्ना झूठे शिक्षकों के प्रति चेतावनी देता है, और वह तो पहले भी कह चुका है कि हमें पवित्र आत्मा दिया गया है और परमेश्वर की बातें समझने के लिए हमारा अभिषेक भी किया गया है। तो आइए इसको जानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसके 1 पद, यहां पर लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, यह आत्मिक संसार की बात है और बाइबल इस विषय में बहुत कुछ कहती है। उदाहरण स्वरूप भजन संहिता 104 उसके 4 पद में, जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। तब हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय के 7 पद में इसी का संदर्भ दिया गया है, और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। और इब्रानियों की पुस्तक के 1 अध्याय में ही कुछ आगे चलकर हम पढ़ते हैं 1 अध्याय के 14 पद में, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने भेजी जाती हैं? मेरे मित्रों, मैंने न तो किसी स्वर्गदूत को देखा है और न ही कोई स्वर्गदूत कभी मेरे पास आया है। मेरा अपना विचार तो यह है कि कलीसिया में उनकी सेवा नहीं है। मेरे विचार में हम में पवित्र आत्मा का अंतर्वास है, और इस प्रबंध के अतिरिक्त अन्य प्रबंध की आवश्यकता नहीं है। मैं अनादि पवित्र आत्मा को सृजित स्वर्गदूतों की अपेक्षा अपनाना चाहूंगा। मेरे विचार में हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य पर ध्यान एवं महत्व देना अति आवश्यक है। परमेश्वर की सेवा में अच्छे स्वर्गदूत हैं, तो पतित स्वर्गदूतों का भी अस्तित्व है। धर्मशास्त्र में उन्हें भी आत्माएं कहा गया है। सुसमाचार वृतांतों में स्पष्ट किया गया है कि प्रभु यीशु के युग में अशुद्ध आत्माएं थी। यह शैतानी आत्माएं हैं जिन्हें धर्मशास्त्र दुष्ट आत्माएं कहता है। मेरे मित्रों, हम विश्वासियों को परमेश्वर के संपूर्ण शास्त्र धारण करने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि हमारा महायुद्ध आत्मिक संसार में है। एफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 12 पद में पौलुस लिखता है, हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। इस पद से स्पष्ट होता है कि शैतान ने अपनी दुष्ट आत्माओं को उचित रूप से संगठित किया हुआ है। उसकी सेना में सेनापति, कप्तान, सूबेदार, नायक सूबेदार तथा सैनिक हैं। मेरे विचार में परमेश्वर की सेना में भी ऐसी सुसंगठित व्यवस्था है। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। एक समय था कि ये बातें मूर्खता की बातें समझी जाती थी, विशेष करके बुद्धिजीवों के बीच में। परंतु आज जब शैतान की उपासना की जाती है तो यह सच ही है। एक बार एक युवक की हत्या की गई तो पर्दाफाश हुआ कि वह शैतान को प्रसन्न करने के लिए नरबलि चढ़ाई गई थी। यह एक युवा पुजारिन 22 वर्ष का आदेश था। मेरे मित्रों, एक पुस्तक है जोनाथन लिविंगस्टन सिगल, उसका लेखक रिचर्ड वाक कहलाता है कि वह उसकी लेखन शैली नहीं है। एक अज्ञात वाणी ने उससे वह पुस्तक लिखवाई थी जिसमें कहा गया है कि एक समुद्री मुर्गा भी उड़ते उड़ते सिद्धता में पहुंच गई। उसमें मानवीय गुण थे। उसने यह देखा कि हम सब में उस महान मुर्गाबी का अंश है। इस पुस्तक का विचार यह है कि जन्म, पाप, रोग और मृत्यु आदि सब वास्तविकता नहीं, भ्रम है। बाइबल जिसे पाप कहती है वह वास्तव में मानवीय व्यवहार है, और स्वतंत्रता का अर्थ है मनुष्य को उचित लगे वही करे। यह कोई नई बात नहीं है। यह सब नरक कुंड से उभरने वाली बातें हैं, अर्थात शैतानी हैं। आज हमारे चारों ओर दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है। इस भौतिकवादी युग में ऐसा होना एक विचित्र बात है। हमारे कॉलेज के दिनों में भी आप चाहें कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, यदि आप आध्यात्मिक बातों में विश्वास करते तो आपको पिछड़ा हुआ माना जाता था। परंतु आज सब कुछ बदल गया है। जी हां, यहोना परमेश्वर की संतानों से बातें कर रहा है। वह कह चुका है कि हमें एक दूसरे से कैसा प्रेम रखना है और एक दूसरे की सुधि लेना है, परंतु सावधान भी रहना है। पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को बहुत प्रेम करता था, अतः उसने उन्हें लिखा फिलिपियों की पत्री 1:9 में, मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। प्रेम करना एक महान बात है, परंतु हम एक घृष्ट पतित दुष्ट संसार में रहते हैं जो हमें धोखा देता है, जो हमें धोखा देगा। हमें अत्यधिक सावधान रहना है। परमेश्वर के वचन के कहने का अर्थ यह नहीं कि हमारा प्रेम चारों ओर से टपकता रहे। पौलुस फिलिपी के विश्वासियों से कहता है कि उनका प्रेम ज्ञान और विवेक के साथ बढ़ता जाए। जी हां, हर एक मनुष्य जो यह कहता है कि वह विश्वासी है, उस पर भरोसा नहीं करें। वे सब विश्वासी नहीं हैं। यीशु ने कहा कि तुम्हारे बीच में भेड़ के रूप में भेड़िये होंगे। जी हां, आज आपको परखने की आवश्यकता है, आप किसको और किस रीति से सहयोग दे रहे हैं। क्या वह सही व्यक्ति है? क्या वह सही संस्थान है? आप उसे पहचानें, उसके पश्चात ही आप उसके सहयोगी बने। मेरे मित्रों, आज आपको और मुझे हर एक को पहचानने की आवश्यकता है कि वह कौन है। मैंने अपनी सेवा में यही सीखा है, नकारें आपसे लाभ उठाएंगे, दूसरे लोग लाभ उठाएंगे। एक बार आराधना के बाद जितने भी पुकार सुनकर सामने आए थे उनमें से एक मुझसे अकेले में बात करना चाहता था। मैं अति प्रसन्न हुआ। मैं उसके पास गया और उसे उद्धार की योजना समझाई। उसने घुटने टेक कर और आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की तथा प्रभु को ग्रहण किया। प्रार्थना के बाद मैंने एक भूल की कि उससे उसका हाल चाल पूछा। उसने कहा कि वह एक सस्ते होटल में रुका हुआ है और वे उसका सूटकेस नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसके पास वहां का भुगतान करने को पैसा नहीं है। उसने बताया कि वहां का खर्च 350 रुपए हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? एक व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करता है और वह अपना सूटकेस छुड़ाने में असमर्थ है, अतः मैंने उसे 350 रुपए दे दिए। मैंने अपनी पत्नी को यह घटना सुनाई। 6 सप्ताह के बाद मैंने उसका चित्र अखबार में देखा। उसका कहना था कि वह 6 महीने से प्रचारकों को मूर्ख बनाकर जीवन निर्वाह कर रहा था। मैं एक और वरिष्ठ पास्टर को फोन करके इस व्यक्ति के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वह उनके पास भी गया था परंतु उन्हें मूर्ख नहीं बना पाया क्योंकि वह मुझसे अधिक समय से उस नगर में थे और अनुभव में भी मुझसे कहीं अधिक थे। उन्होंने कहा कि बाइबल स्पष्ट कहती है, आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। पौलुस फिलिपी के विश्वासियों से कहता है कि वे प्रेम में बढ़ते जाएं, परंतु ज्ञान और विवेक के साथ। जी हां, आपको प्रेम का प्रदर्शन बुद्धिमानी से करना है। आपको अत्यधिक सावधान रहना है। वह आगे कहता है, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो वरन आत्माओं को परखो। मैं किसी प्रार्थना करने वाले चंगाई के प्रचारक की चर्चा सुनकर उत्साहित नहीं होता हूं। लोग मुझसे कहते हैं, आप उसकी सभा में क्यों नहीं जाते? मेरे मित्रों, मैं समय गंवाना नहीं चाहता हूं। वचन कहता है कि आत्माओं को परखो। यह सब ढोंग है क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। ये झूठे शिक्षक हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय उसके 3 पद में पौलुस शिक्षक की परिभाषा देता है। जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। भविष्यवाणी का उद्देश्य है शिक्षा, उपदेश और निर्देश देना। आज अनेक बाइबल शिक्षक ऐसे हैं जिनसे हमें सावधान रहना है। सर रॉबर्ट एंडरसन ने अति उचित ही कहा है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं की बातों से सावधान रहें। कोई प्रभु प्रभु करके आए तो आवश्यक नहीं कि हम उससे प्रेम करें। वह जहरीले सांप से भी अधिक खतरनाक है क्योंकि वह झूठी शिक्षा देता है। उसके हाथ में बाइबल रहती है परंतु वह वचन की शिक्षा नहीं देता है। आज बहुत से मसीही इसके चंगुल में फंस जाते हैं और वे ऐसा कार्य कर बैठते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था। कारण सिर्फ यही है कि आत्माओं की परख उनमें नहीं है। उन्होंने उसके बारे में नहीं सोचा और इतने जहरीले सांप को वे पकड़े हुए हैं कि वे छूट नहीं पा रहे हैं। आज आपको सचेत होने की आवश्यकता है। पहला योना की पत्री 4 अध्याय के 2 पद में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। कैसे? जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है। प्रभु यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ, यह उसका देह धारण है। यदि वह देहधारी परमेश्वर नहीं है तो कलवरी और कब्र व्यर्थ है। झूठे शिक्षक प्रभु यीशु के ईश्वरत्व से इनकार करते हैं। आप इसका अर्थ यह न लगाएं कि वे प्रभु यीशु की आलोचना करते हैं। वे उसके विषय बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसे एक महानायक कहते हैं, परंतु यदि आप उनसे पूछें कि क्या वह देहधारी परमेश्वर है, तो वे इसे स्वीकार नहीं करते। अपने सुसमाचार वृतांत में यूहन्ना कहता है कि आदि में वचन था। ये वचन कौन था? वह परमेश्वर था। उसने जगत को उत्पन्न किया। वह देहधारी हुआ। कहां? बैतलहम में। यदि आप उसके देह धारण का इनकार करते हैं, तो उसके क्रूस के कार्य का भी इनकार हुआ, क्योंकि उसका क्रूस का कार्य उसके ईश्वरत्व पर ही निर्भर है। जी हां, आज प्रभु यीशु की अत्यधिक प्रशंसा करके उसके ईश्वरत्व को अनदेखा किया जाता है, परंतु सत्य तो यह है कि वह परमेश्वर ही है, चाहे आप कुछ भी कहें। यूहन्ना एक झूठी शिक्षा का खंडन कर रहा है। उस युग में एक झूठी शिक्षा प्रचलित थी कि प्रभु यीशु ने बपतिस्मा पाते समय ईश्वरत्व को ग्रहण किया और कलवरी पर उसका ईश्वरत्व उसे छोड़कर चला गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह एक अद्भुत शिशु नहीं था और उसकी मृत्यु भी असामान्य नहीं थी। उसका पुनरुत्थान सदेह था। रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसके 25 पद में पौलुस कहता है कि वह हमारे अपराधों के लिए घात किया गया और हमारी धार्मिकता के लिए मृतकों में से जिलाया गया। यशाया नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है कि हमारे लिए एक पुत्र जन्मा और हमारे लिए एक पुत्र दिया गया। वह पुत्र अनादि अनंत समय से आया था और मरियम से एक मानव शिशु रूप में जन्मा था। उसकी उपासना में चरवाहे और ज्योतिषी आए थे। जी हां, वह शांति का राजकुमार था जिसने क्रूस पर बहने वाले अपने लहू के द्वारा शांति स्थापित की और एक दिन युद्धों से त्रस्त इस संसार में शांति लाएगा। यहां हमारे लिए ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह एक झूठे शिक्षक या सच्चे शिक्षक की पहचान है। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। अतः हम यह परखें कि कोई प्रचारक प्रभु यीशु के विषय क्या विश्वास करता है। यह हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आपको किसी को भी सुनने की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम आप उसे परखें। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, अर्थात परखने के द्वारा से। जब तक आप उसे नहीं परखेंगे, आप उसे नहीं पकड़ पाएंगे। और परमेश्वर का आत्मा हमें यही कहता है कि हम झूठे शिक्षकों से बचे रहें। मेरे मित्रों, आज बहुत सारे लोग इसी प्रकार झूठे शिक्षकों के चंगुल में पड़े हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं और यही कारण है कि वे सत्यता को नहीं जानते हैं। विश्वास विश्वास या प्रभु प्रभु कहने से कुछ नहीं होगा। आपको स्वयं प्रभु की निकटता में आना होगा। यदि आप विश्वासी कहकर किसी ऐसे व्यक्ति को सहयोग दे रहे हैं या उसकी सहायता कर रहे हैं जो वास्तव में विश्वासी नहीं है, तो आप अपने धन, अपने समय और अपने आप को उसके हाथों में दे रहे हैं। आज परमेश्वर का दास यूहन्ना परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सबों को सचेत करता है कि हम इन सारी बातों को समझें, देखें और तब जा करके उनकी सहायता करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम में से हर एक को जो उस पर विश्वास करते हैं आत्मा दी है और हमें बताया गया है कि हम किस प्रकार परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम उन्हें परख सकते हैं। मैं नहीं जानता कि आप अभी तक इस समय तक किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं या किस प्रकार आप लोगों को परख रहे हैं, परंतु आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आज के बाद आप परमेश्वर के हर एक भक्तों को भी जांचें, परखें और जो सही है उसकी आप सहायता करें, अन्यथा आप उसे अपने निकटता में ना आने दें। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने झूठे शिक्षकों के बारे में जान लिया है, सच्चे शिक्षक की पहचान को जान लिया है और कैसे आप आत्मा की परख को कर सकते हैं इसे भी जान लिया है। कृपया इस वचन का पालन करें, प्रभु की संगति में बढ़ें और उसकी महिमा करें। प्रभु आप सबको आशीष दें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है, जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है, यीशु 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 यीशु, रिश्ता हमसे जोड़ता है, और ना तन्हा छोड़ता है, रिश्ता हमसे जोड़ता है और न तन्हा छोड़ता है, यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है, यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, जब मैं दुआ में तुझको बुलाऊं, तुझको बुलाऊं, पास सपने पाऊं, ओ जब मैं दुआ में तुझको बुलाऊं, तुझको बुलाऊं, पास सपने पाऊं, बंधन सारे तोड़ता है, रब से हमको जोड़ता है, बंधन सारे तोड़ता है, रब से हमको जोड़ता है, यीशु 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 यीशु, जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है, यीशु यीशु मेरा यीशु।